ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज इंटरनेशनल योगा डे है और भारत का सबसे प्राचीन योग भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सिखाया, जहां का हर चैप्टर योग है। और आज की दुनिया के अंदर योग को योगा कह दिया और योगा को कहीं न कहीं सीमित कर दिया, आसन, प्राणायाम आदि तक। परंतु भगवान ने जब योग सिखाया अर्जुन को, तो कहीं पर भी प्राणायाम या आसन नहीं करवाए। लेकिन फिर भी गीता को कहा गया योग शास्त्र। तो वो कौन सा योग था? वो योग एक सर्वश्रेष्ठ योग, क्योंकि योग का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो योग माना जोड़। जिस तरह वियोग मीन्स सेपरेशन, तो योग मीन्स कनेक्शन। किसका किसके साथ? भौतिक जगत में हम रहते हैं तो हमारा कनेक्शन भौतिकता के साथ होता है, और जिसके जीवन में भौतिकता आती है तो कहेंगे इसके जीवन में एक भौतिक योग है। हमारा संबंध समय के साथ होता है, और जब कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता है तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध व्यक्तियों से है, और किसी व्यक्ति से हमें समय पर मदद मिल जाती है तो यही कहते इस व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है लाइफ में, कोई क्षण ऐसी नहीं कि जब हमारे जीवन में योग नहीं है। एक बच्चे का भी जब पढ़ाई से योग होता है तभी वो पढ़ाई पढ़ सकता है। जिसका जिस चीज से योग है उससे उसमें वो माहिर हो जाता है। किसी व्यक्ति का अगर के इष्ट देव से कनेक्शन है और उनसे कोई प्राप्ति हो जाती तो यही कहते इसका जीवन में एक दैवी योग है। लेकिन राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ। लेकिन ये संबंध तभी जुड़ता है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। कल आप सभी ने आत्मा का लेसन तो समझा कि आत्मा की वास्तविकता क्या है, और हर कोई आत्मा को स्वीकार भी करता है, चाहे उसको सोल कहा, शक्ति कहा, रूह कहा, आत्मा कहा, एनर्जी कहा, जो भी कहो। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया में अनेक मत मतांतर है, और इतनी सारी मते हो गई है ईश्वर को लेकर के कि यही पता नहीं कि आखिर भी सत्य क्या है। और जब कहा जाता है ट्रुथ इज वन, सत्य एक है, तो वो सत्य क्या है फिर जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं? और जितना ही सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं उतना ही सत्य से दूर चले जाते हैं। कि उसी ईश्वर के नाम पर आज दुनिया के अंदर कितने झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ईश्वर को समझा ही नहीं है। ईश्वर सत्य है, वो सत्य एक है, तो आज अनेक क्यों हो गए हैं? वो एक क्या है फिर? कुछ समय पहले मैं कहीं गई थी तो एक बहन मेरे सामने आकर कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी मां से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो मां उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है, बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा मां से कहता है भगवान तो एक होना चाहिए। और अच्छा, अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सबका हेड कौन है? फैमिली में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है? वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसीलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन त्योहार आदि होता है तो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई फोकस माई माइंड, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उस बच्चे को लगता है मंदिर जाने के बाद आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो सत्य क्या है। ये शायद उस मां का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल के जेनरेशन के बच्चे के ये सवाल है और माता पिता उसके उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही मालूम नहीं है तो क्या करेंगे। एक बार एक कार्टून देखा हमने जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, हम ही परमात्मा है, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, कहां नहीं है, इज प्रेजेंट एवरीवेयर। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता है वो सब भगवान के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट कि यही भगवान है। अब सोचने की बात है कि जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या समझा कि आखिर हु इज गॉड, कि कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको सारा पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया कि आखिर भगवान कौन है। इसीलिए कहा कि आखिर भी वो परमात्मा कौन है? क्या ये सारी मतें सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कोई और है जिसको समझा ही नहीं है? क्योंकि ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्या नेचर को परमात्मा कहे या आत्मा को कहे, क्या ब्रह्म को कहे या कण कण में व्यापक है कहे, क्या निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। तो आखिर सत्य क्या है? वो एक कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक ने हाथी के पैर पकड़े तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक ने पीठ पकड़ा तो कहा दीवार जैसा है, एक ने पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी जैसा है, एक ने सूंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और एक ने कान पकड़ा तो कहा सूप जैसा पंखे जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? क्या ये पांचों ही सत्य है? पांच में से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य कुछ और है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए, एक छठा सूरदास और दूर बैठा है, आपको जाकर उसको बताना है कि हाथी कैसा है। वन बाय वन ये जाते हैं। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, वो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है कि वो एकदम लचीला सांप जैसा है। और थोड़ी देर के बाद पांचवा जाकर कहता है कि वह सूप जैसा पंखे जैसा है। अब ये पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या कॉम्प्रिहेंड करेगा कि आखिर भी हाथी कैसा है? हर कोई आता है अलग बात कहता है, ये कैसा विचित्र प्राणी है, सोचेगा ना, कंफ्यूज होगा। लेकिन फिर भी विश्वास करता है कि पांच ने महसूस तो किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही होगा, ऐसा होगा कोई प्राणी। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, तुमने जो समझा हाथी के विषय में, तुम्हें जाकर उसको बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया उसने जो बताया वो मैं तुझे बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी अपना रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी तो वो दीवार जैसा हो जाता, कभी तो वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, और कभी वो पंखे जैसा हो जाता है। सातवां सूरदास, जिसका आईक्यू लेवल हाई था, ये सुनने के बाद क्या कहेगा, क्या कहेगा? क्या कहेगा? एक ही है। वो यही कहेगा, हाउ कैन यू बिलीव दिस? कोई प्राणी रंग बदल सकता है? पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू बिलीव दिस? तो छठा सूरदास क्या कहता है, अरे पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास कहता है आई डोंट बिलीव दिस, नहीं मानता हूं। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया अपने साधना की शक्ति से, और उन्होंने मनुष्य को बताना चाहा कि हमने ये महसूस किया। मनुष्य ने विश्वास कर लिया, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया कहा कण कण में है, किसी ने निराकार में कुछ महसूस किया तो कहा निराकार है, किसी ने साकार से कुछ महसूस किया तो कहा साकार है। अब उन्होंने मनुष्य को सुनाया, मनुष्य ने विश्वास किया कि ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही होगा, सब भगवान है। वो मनुष्य आज की जनरेशन के लोगों को कहना चाहते ये सब भगवान है। आज की जनरेशन के लोग जिसका IQ लेवल हाई है वो क्या कहता है, हाउ कैन यू बिलीव दिस? इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? मनुष्य क्या कहता है, ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो आज का मनुष्य क्या कहता है, आई डोंट बिलीव दिस, मैं नहीं मानता। इसलिए दिन प्रतिदिन नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है, सत्य किसी को पता ही नहीं। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो सुनाया क्या उसको सत्य मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आपको अपनी मत को कसकर देखना है सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो, समझो। ये कसौटी है पांच बातें, जिस पर आपको अपनी मत को कसकर देखना है। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। सत्य एक होता है, ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, लेकिन उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, उसका कोई शिक्षक नहीं हो सकता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरे हो। मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। परमात्मा को कहा जाता है अजन्मा, अकाल मूरत। अकाल मूरत माना जिसको काल नहीं खा सकता है, अकाल मूरत है। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। अब दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसने देह धारण किया, तो जिसको देह है उसको देह के संबंध है। परमात्मा अजन्मा है तो न देह है न देह के संबंध है। अब जिसने भी कर्म की देह धारण किया तो कर्म किया ऑर्गन से। अब कर्म किया तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो कर्म और कर्म के फल के चक्र में हम आते हैं। परमात्मा अकर्ता भोक्ता, न कर्म करता है न भोगता है। अब जिसने कर्म किए, या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा उससे भी परे हैं। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता है या दुख मिलता है, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते, परमात्मा उससे भी परे है। तो जो इन सभी चक्र से ऊपर है उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथी बात, परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी उसको कहते हैं। त्रिनेत्री जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला है, और त्रिमूर्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न किया, उसको कहेंगे परमात्मा। तो ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ और धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब ये देखें कि ये पांचों बातें किसके साथ लगती है। एक एक मत को अगर उठाया जाए कि जब हम कहते प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? नहीं करेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? कहेंगे सुप्रीम अथॉरिटी? नहीं। वो किसी कवि ने गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा? वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है। तो इसका मतलब प्रकृति परमेश्वर नहीं है, यह अज्ञान है कहना। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरा, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि, तो आत्मा के साथ ये पांचों बातें कितना लगती? क्या आत्मा को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो मंदिरों में जाकर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब सत्य क्या है? हम ही मात पिता हैं या हम उसके बच्चे हैं? क्या कहेंगे? हम ही परमात्मा है या हम परमात्मा के संतान है, ये कहना ठीक है? तो क्लियर हो गया कि आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है. इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस जो हमने कह दिया, सत्य तो नहीं है. कई लोग क्या समझते कि नहीं, जैसा अगर हमने कर्म किया ना तो हम परमात्मा बन जाएंगे. परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो हमने प्राप्त कर लिया. मनुष्य अपने कर्म से जो बनना चाहे बन सकता है, जिस पद को हासिल करना चाहे कर सकता है. इसीलिए कोई ने अगर पुण्य का काम किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया कहेंगे देवात्मा है. तो देवात्मा ही अनेक है, महात्मा ही अनेक है, धर्मात्मा ही अनेक है, पुण्यात्मा ही अनेक है, पापात्मा ही अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है. परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन ये कहा जाता है. तो इसीलिए परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, ये हमें स्मरण रहे, स्मृति में रहे. तो क्लियर हो गई ये बात. और ये सब भी आत्माएं हैं, महान आत्मा, परम धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा नहीं कहा, महान परमात्मा नहीं कहा, देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा. तो क्लियर हो गई ये बात कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा की संतान है. क्लियर. तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? क्या हुआ है, अज्ञानता के कारण हमने दो दो बातें कही. एक तरफ ब्रह्म ईश्वर है भी कहा, दूसरी ओर क्या कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर. पार जो पांच तत्वों की दुनिया से पार रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर. अब सत्य क्या है, ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है. चौथी बात, जब हम कहते कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अगर सब में ईश्वर हो तो फिर आज एक मनुष्य प्रैक्टिकली देखे तो क्या कहता है, कण कण में भगवान है, माना सब में ईश्वर है, तो कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान हो सकता है? क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? हो सकता है नहीं, अज्ञान है ये. तो ऊंचे से ऊंची हस्ती कहां अज्ञानता के कारण हमने कह दिया कण कण में है, यानी कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है, कैसे कह दिया? तब व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं, हर एक में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है. अगर हर एक में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है तो एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का. तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या परमात्मा के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि एक व्यक्ति को गलत काम करने से रोक सके? क्या कहेंगे? आज घर में बच्चे होते हैं या गली में बच्चे खेलते हैं और खेल खेल में किसी बात पर झगड़ा हो गया और मारपीट करने लगे, तो आप देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे, है ना? आप पूछेंगे जाकर के कि बच्चे क्या हुआ? आप तो अभी तो खेल रहे थे, क्यों लड़ रहे हो? कहेंगे खुद का बच्चा नहीं है तो भी कहेंगे, उनको छुड़ाएंगे। तो ईश्वर जो सर्व का मात पिता है, सुप्रीम गॉड फादर उसको कहते हैं, तो मात पिता है और वो सबके अंदर बैठा है और मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है और वो उसको रोके ही नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब है? कोई मतलब क्यों बैठा है फिर? देखो जब कोई हमें कोई बात पूछता है या बताता है, हमें मालूम नहीं होता है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना ऊपर वाला जाने। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, फिर हु इज दिस ऊपर वाला? ऊपर वाला ही जाने, अनजानेपन में भी यही मुख से निकलता है, तो फिर कौन है ऊपर वाला? कई लोग कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी होगी तो कर लेंगे, हो जाएगा। ऊपर वाला कौन है? वो अगर सर्वव्यापी है तो ये कहना चाहिए जो सब में बैठा है वो जाने। आज गीता में जब उन्होंने महावाक्य दिए, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं, आता हूं, वायदा दिया है। तो जब वो आता है तो मना नहीं होगा, तभी तो आएगा। अगर यही है तो कौन आएगा? अगर यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे बढ़ेगा? कई सवाल मन में खड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? आज देखो प्रकृति में भी ये गुण है। एक लोहा को आप अग्नि में रखो तो थोड़ी देर अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, एकदम लाल और गर्म हो जाएगा संग का रंग। परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है और वो हम सबके अंदर बैठा हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग दिखाई न दे तो बैठने का कोई मतलब है? नहीं। तो ये सिद्ध करता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तो फिर कौन सर्वव्यापी है? कण कण में कौन है? तो कहा शैतान है। और वो शैतान मनुष्य में आकर कहने लगता है मैं ही सर्वव्यापी हूं, आप मेरी पूजा करो। ईश्वर ने तो कभी कहा ही नहीं। तो ये शैतान का कर्तव्य है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्या कोई क्वेश्चन है सर्वव्यापकता को लेकर के? है कोई क्वेश्चन? लेकिन फिर तब बात आती है कि शास्त्रों में ही तो कहा गया कि मैं सर्वव्यापी हूं, तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है। लेकिन हो सकता है शास्त्र में जिस भाव से कहा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र अपने अनुभव के बेसिस पर लिखे हैं। और जब अपने बेसिस पर ये शास्त्र उन्होंने लिखे तो कहा जाता है कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे दे वर एबल टू ट्रेवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल से गुजर सकते थे। और जब उन्होंने कली काल को देखा, उस समय कली काल नहीं था जब शास्त्र लिखे गए, लेकिन जब कलियुग को देखा तब उन्होंने महसूस किया कि कलयुग में इतने घोर पाप कर्म होने लगेंगे, मनुष्य को पाप कर्म से बचाना हो तो क्या करना पड़े। तब उन्होंने शास्त्र में इस बात को लिखा कि मानव तुम जब पाप करते हो तो ये मत समझना कि कोई तुझे नहीं देख रहा है, ईश्वर कण कण में व्यापक है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और पाप कर्म न करे। इतनी शुभ भावना से ये बात लिखी गई है। लेकिन आज के युग में उस भाव को तो भूल गए, ईश्वर कण कण में है ये कह दिया, और खूब पाप कर रहा है मनुष्य। इसलिए कहा गया था कि ईश्वर सर्वव्यापी है कि जब मनुष्य पाप करे तो उसको स्मृति रहे कि मैं ये पाप जो कर रहा हूं ईश्वर भी मुझे देख रहा है, तो एक डर रहे और डर के कारण वो पाप न करे। लेकिन आज वो डर भी खत्म हो गया, मनुष्य पाप करता ही चला जा रहा है, और जब उसको कोई कहता है तो क्या कहता है, भगवान अगर देख रहा है तो वो तो मुझे छुड़ाएगा ना, वो क्यों देख रहा है। तो सर्वव्यापकता की बात को भी नहीं माना और पाप करता ही चला गया। वो वाल्मीकि जी की बात याद आती है कि वाल्मीकि जी एक लुटेरे थे, और उस समय ऐसा हुआ कि कई लोगों को लूटता था अपने घर परिवार चलाने के लिए, और जब सबको लूटता था तो एक बार एक महात्मा जी को पकड़ा। महात्मा जी ने उसको एक क्वेश्चन किया कि ये कर्म तुम क्यों कर रहा है, लूटने का काम क्यों कर रहा है। तो कहा, मेरे परिवार को पालना है, मैं ये कर्म करता हूं ताकि अपने परिवार को चला सकूं। तो महात्मा ने कहा, पहले उस परिवार वालों से पूछ तो लो कि जिसके लिए तुम ये कर्म कर रहे हैं, जब फल भोगने का समय आएगा, पाप का फल, तो क्या वो आपके साथी बनेंगे। तो उसने कहा, कौन सी बड़ी बात है, जरूर मैं उनके लिए कर्म कर, वो भी क्यों नहीं साथी बने। कहा, पूछ के तो आ, ठीक है मैं पूछ के आता हूं, आप यहीं रहना। बांध के गया महात्मा जी को, और घर जाकर के सबसे पहले माता पिता से बात की और कहने लगा कि हे माता पिता, लेकिन जो मैं कर्म कर रहा हूं परिवार को पालने के लिए तो कर रहा हूं, तो क्या मेरा कर्म का फल भोगने का समय आएगा तब आप मेरे फल को भोगने में साथी बनेंगे। तो परिवार वालों ने क्या कहा, क्या कहा, नहीं। माता पिता ने कहा, बेटा हम तो पहले चले जाएंगे, हम कहां जाएंगे, कहां होंगे, तुम कहां होगा, हम तेरा फल कैसे भोगने आ सकते हैं। जवाब मिल गया। फिर बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि पिताजी आप चले जाएंगे, आप कहां होंगे, हम तो यहां होंगे, हम आपका फल कैसे भोगेंगे। पत्नी से पूछा, तू तो मेरी अर्धांगिनी है, तुम तो साथी बनेगी फल भोगने के समय भी। तो क्या कहा उसने, पत्नी ने क्या कहा, पत्नी ने कहा, शरीर छूटने के बाद आप कहां जाएंगे, मैं कहां जाऊंगी, मुझे क्या मालूम, जो आपका फल भोगने के समय मैं हाजिर हो जाऊं। तो सबका जवाब मिल गया। तो उसने कहा, जिसके लिए मैं ये कर रहा हूं कोई भी मेरे साथी नहीं बनेंगे, फल भोगने का समय आएगा तो मुझे अकेले को भोगना होगा, तो फिर मैं ये कर्म क्यों करूं। और वहां से परिवर्तन। आज भी कई लोग जब पाप करते हैं ना, पाप का आचरण करते हैं, उस समय उसको पूछो कि क्यों कर रहे, तो कहते परिवार को पालने के लिए, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं जो अपनी फैमिली को चलाना है। लेकिन पहले उस फैमिली वालों से पूछ तो लो कि जो पाप करके आप उस कमाई को कब कर रहे हो, क्या वो फैमिली वाले उसको भोगने के लिए तैयार है, जब फल भोगने का समय आएगा तब। क्या कहेंगे फैमिली वाले, यही कहेंगे आपने किया आप भोगो, हम तो चले और उड़ चलेंगे। तो इसीलिए क्या ईश्वर सर्वव्यापी है? आपका विवेक क्या कहता है? नहीं, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े कि किसी को क्वेश्चन है? क्लियर हो गई। पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? कोई नहीं, हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता? जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात है, राइट? और जो हवा को एकदम शांत दिखाना है, जैसे कि हवा चल ही नहीं रही है, इतना पीसफुल है, तो पूरा चित्र निकाल देंगे, नदी नाला पहाड़ सब कुछ, और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी शांत प्रकृति है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है, इतनी शांत है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? ही नहीं, तो किस आधार पर कहा निराकार है? ईश्वर की एक महिमा में गाते हैं वो निर्गुण है। निर्गुण का भी शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण ना ही, तो निराकार का शाब्दिक अर्थ लिया जाए माना जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन उसका अपना स्वरूप तो है, वो कौन सा है? तो जिस तरह एक मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशुओं का पिता पशु है, पक्षियों का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? कल आपको बताया होगा आत्मा का स्वरूप क्या है, हाँ? ज्योति स्वरूप है ना, इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में वो ज्योति जलाई। तो अगर आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना? मनुष्य का पिता मनुष्य, पशुओं का पिता पशु, पक्षियों का पिता पक्षी, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ज्योति स्वरूप। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगती है, क्या सभी धर्म वाले उसको स्वीकार करेंगे? तो हिंदू धर्म में उस ज्योति स्वरूप की प्रतिमा रखते हुए हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम जो सदा कल्याण करने वाले सदा शिव है, उसकी प्रतिमा रख करके मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित करता है, पूजा करता है ज्योति स्वरूप के। उस पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का निराकार यादगार जो है उसकी पूजा कर रहे हैं, जो सर्व का कल्याण करने वाला कल्याणकारी है। सदाशिव परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है, सदाशिव माना जो सदा कल्याण करने वाले हैं, शिव माना पवित्र, इसलिए कोई छोटे बच्चे को देखते तो कहते शिव बालक है। जैसे बच्चा पवित्र है ऐसे परमात्मा पवित्र है। फिर कहां अशांति होंगी तो कहेंगे बोलो शिव, यानी शांति करो, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है। तो गुणवाचक नाम है। आज मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं है, किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना? किसी का नाम होगा अमीर चंद, होगा फकीर चंद, तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है। किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं है, है ना। आजकल तो लोगों ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, शंकर भाई, देवताओं के नाम, और उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो डबल नाम चाहिए, राधे श्याम, सीताराम, है ना, लक्ष्मी नारायण, डबल नाम चाहिए। क्वालिटी एक की भी नहीं है, नाम डबल चाहिए। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम होता है, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, क्वालिटी एक की भी नहीं है। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसीलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम है, जो आज भी महान तीर्थ स्थान है। और हर मंदिर के नाम देखो तो गुणवाचक है। नाम के अंत में, शिव के जितने भी मंदिर है उसके नाम के अंत में या नाथ या ईश्वर होगा। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सब शिव के मंदिर, जो सर्व का नाथ और सर्व का ईश्वर है, है ना। भक्ति में भी कितना सुंदर यादगार है। फिर उसके बाद देखें कि भक्ति में यह यादगार तो है, लेकिन उसको कहा गया देवों का भी देव महादेव, है ना। शिव को क्या कहते हैं? महादेव, महादेव का मंदिर। क्यों कहा देव महादेव? देवों का भी देव तो देवियों का भी देव, इसलिए उसको महादेव कहा। इसीलिए तो श्री राम को भी दिखाया, रामेश्वरम में जाकर शिव की पूजा कर रहे हैं, तो श्री राम का भी आराध्य शिव है। श्री कृष्ण का भी आराध्य शिव है, इसीलिए तो गोपेश्वर मंदिर बना है, जहां वृंदावन के अंदर जहां गोपों ने मिलकर के शिव की पूजा की। तो हर जगह पर आपको शिव के यादगार मंदिर जरूर मिलेंगे। देवताओं के मंदिर स्टेट वाइज हो गए। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। गुजरात महाराष्ट्र में जाओ तो गणेश पूजा मिलेगी। तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा, मुर्गन की पूजा मिलेगी। तो राजस्थान में जाओ रामदेव जी की पूजा मिले। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन भारत का एक गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों के देव महादेव। और जितने भी मंदिर है बड़े बड़े, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, हर मंदिर के पीछे एक न एक कथा जुड़ी हुई है, है ना। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं। कौन सी? जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, दोनों की आकृति अलग है, एक निराकार ज्योति स्वरूप, एक आकारी देव पुरुष, दोनों का कार्य अलग। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुला तो महाविनाश, प्रलय हो जाता है। तो एक प्रलयनाथ, एक भोलानाथ, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? आज तक तो हम दोनों को एक ही मानते आए, अज्ञानता के कारण। अब ज्ञान मिला है तो अब तो नहीं करेंगे ऐसा, या अभी भी करेंगे? क्या कहेंगे आपका विवेक, क्या कहेंगे, करेंगे? अभी उसको याद करना है। यह हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का जब हज यात्रा पर जाते हैं तो वह काबा का पवित्र पत्थर है जिसके पीछे कहानी है। इस्लाम धर्म में जब ईश्वर को लेकर के मतभेद होने लगा तब कहा जाता लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो परमात्मा ने एक आकाशवाणी की, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से वो पत्थर गिरा था जिसको मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने हाथों से मक्का में स्थापित किया, काबा के पवित्र पत्थर जिसको कहा जाता है। और उनकी हज यात्राएं जब निकलती है तो हर कोई तो नहीं जा सकते, लेकिन जो गए वो ये बताते हैं कि हमने अपने पापों का प्रायश्चित किया, बंदगी की, और बंदगी करने के बाद अंत में एक लाइन जरूर कहते हैं, और वो लाइन है हम जब मक्का जाते हैं ना तो बंदगी करते हैं, फिर शैतान को पत्थर मारते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं, जबकि 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में भी नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। बोलो। इसीलिए उन्होंने कहा हे परवरदिगार नूरे इलाही, नूरे इलाही का मतलब अल्लाह नूर है, नूर माना लाइट प्रकाश तेज, ज्योति माना लाइट प्रकाश तेज, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ रोम में तो वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा चर्च माना जाता क्रिश्चियनों का, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता, लेकिन वहां पर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, एक निराकार ज्योति स्वरूप लाइट का सिंबल मिलेगा जिसको वो परमात्मा मान करके याद करते हैं। गुरु नानक देव ने कहा एक नूर, और इसलिए दिखाते कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी, शिव की महिमा गाई थी एक नूर। तो हिंदुओं में जिसने ज्योति कहा, इस्लाम धर्म में जिसको नूरे इलाही कहते हैं, अल्लाह नूर है, तीसरा क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, सिख धर्म में एक नूर कहा, तो बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है हर धर्म में, तो सर्व धर्म मान्य किसको कहेंगे? एक ही निराकार को कहेंगे, है ना? सर्व धर्म मान्य है, सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए शिव, शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है शिव शंभू। लोगों ने शंभू शंकर के लिए समझ लिया, वास्तव में शंभू का ओरिजिनल मीनिंग है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको किसी माता पिता ने पैदा नहीं किया है, जो स्वयं प्रकट हुआ है वो स्वयंभू है। और तीसरा सर्वोपरि, न जन्म है न मृत्यु है, न शिव बाबा का जन्म है ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसको काल कभी खा सकता है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से परे, न देह ने देह का संबंध है, अव्यक्त मूरत गीता में शब्द है, मैं अव्यक्त हूं, अव्यक्त, व्यक्त माना व्यक्ति, व्यक्ति को व्यक्त कहते हैं जिसका पास ये शरीर, वो अव्यक्त है, अव्यक्त माना जिसके पास व्यक्त शरीर नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है ना। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका अस्तित्व तो है ना, इसीलिए आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा जाता है कि जिसका विनाश कभी होता ही नहीं, अविनाशी। तो परमात्मा के लिए भी कहा जाता अविनाशी, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता है, जो इटर्नल है, सदा के लिए है, उसको अविनाशी कहेंगे। तो जो सभी चक्रों से पर है लेकिन फिर पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का त्रिकालदर्शी, आदि मध्य और अंत। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, ये तीन लकीर सिंबलाइज करते आदि मध्य और अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला है, प्रदान करने वाला है। और त्रिमूर्ति, उसके पूजा में बैल पत्र चढ़ता है, जो तीन पत्ते इकट्ठे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, और ये तीन पत्र जो है उसको कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता। इसलिए ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति दिखाते हैं, और उत्पत्ति कहां से होती है, लाइट से होती है, यही शास्त्रों में दिखाया गया है ना। और सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए ये तीन देवताओं की महिमा भी हर धर्म में आती है। देखो हिंदू धर्म में क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इस्लाम धर्म में कहते हैं जिब्राइल मिकाइल इसराफिल। जिब्राइल यानी जो सबक देने वाला, मिकाइल माना जो रोजी रोटी देना यानी पालना करने वाला, सबक देना माना ज्ञान देने वाला, और इसराफिल माना जो कयामत लाने वाला। इसी को ही क्रिश्चियन धर्म में कहा द थ्री होली एंजल्स या थ्री होली गोस्ट, यानी जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी, ब्रह्मा को संसारी बता दिया, विष्णु पालन करता है तो उसको भंडारी बना दिया, और एक लाए दीवान यानी एक महाविनाश को ले आता है। ये तीन कार्य उनको सौंपे हुए हैं। तो सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, जैसे कहा माँ शारदा ने, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है ना। तो भावार्थ ये कि परमात्मा गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये पांचों बातों की कसौटी एक के साथ ही लगती है। तो ये था परमात्मा का दिव्य परिचय। जब किसी का परिचय होता है तो पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए, वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पढ़ाई किया है, चौथी बात एड्रेस चाहिए, कहाँ रहता है व्यक्ति, और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, वो भी पता करता है। तो पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज ईश्वर का भी परिचय हमने देखा, ये पांच बातें देखी। सबसे पहली बात, जिसका नाम है सदा शिव, जिसके मंदिरों के नाम अलग अलग है, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, है वो एक ही ज्योतिष्वर। दूसरा, उसकी आइडेंटिटी एक होनी चाहिए हर धर्म में। तो हिंदू धर्म में जिसको कहा ज्योति स्वरूप, इस्लाम धर्म में उसको कहा नूर, प्रकाश। क्रिश्चियन धर्म में उसको कहा लाइट, सिख धर्म में उसको कहा एक नूर। तो सभी धर्मों में एक ही बात है या अलग अलग है? एक है, आइडेंटिटी एक ही है। तीसरा उसके क्वालिफिकेशन, पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, ये उसके क्वालिफिकेशन है। और उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी हो जाए तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य कराना, ये परमात्मा का काम है। कराते हैं शंकर के द्वारा, लेकिन कराने वाला कौन, करण करावन हार कौन है? एक ही परमेश्वर है ना। तीसरा जो कहा उसके क्वालिफिकेशन, चौथा कहा उसका एड्रेस, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, हमने देखा एड्रेस है, पार ब्रह्म में रहता है। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है? तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करना, ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं, इतना सुंदर है ये ग्रुप। ओम शांति। तो आज तो पता चला, या अपना बच्चा आपसे पूछे, आपका बच्चा आपसे पूछे कि भाई हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, ये सारे भगवानों का हेड कौन है, तो अब तो जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नो कंफ्यूजन। हाँ ओके, दो मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे।